नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 3,200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी। रणजी क्रिकेट में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की और बर्मिंघम में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला एंडर्स एंडरसन से हो रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा सिद्ध हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए, जिसमें 5,000 दिल्ली के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी।
आज का ये पीएम स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। और कोविड के समय सबने देख लिया कि रेहड़ी पटरी वालों की ताकत क्या होती है।
श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के ठेले और दुकानें भले ही छोटी हों, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अतीत की सरकारों ने रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके कारण उन्हें अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की धन की आवश्यकता उच्च ब्याज वाले ऋणों से पूरी होती थी। उनकी बैंकों तक कोई पहुंच नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई ऋण गारंटी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के 2 अतिरिक्त गलियारों की आधारशिला भी रखी।
आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तारीख है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वे भी भारत के नागरिक बन जाएंगे।
माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए मुख्य बिंदु है। मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद उच्च स्तरीय समिति ने देशभर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के त्यागपत्र देने के बाद दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद रिक्त थे। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बॉन्ड संबंधी डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मंगलवार को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा दिया था। इस डेटा को www.eci.gov.in/candidate पॉलिटिक पार्टी पर देखा जा सकता है। झारखंड से दो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। ये हैं भाजपा से डॉ प्रदीप वर्मा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से डॉ सरफराज अहमद। विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने आज इसकी औपचारिक घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से बातचीत की। श्री तोबगे सोमवार तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान श्री शेरिंग तोबगे मुंबई भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर परस्पर विश्वास, सद्भावना और समझबूझ पर आधारित मित्रता और सहयोग का रिश्ता है। भूटान के प्रधानमंत्री की इस भारत यात्रा से दोनों पक्षों को अनूठी भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही दोनों देश आपसी संबंध बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर सकेंगे। भारत ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास का लगातार समर्थन किया है। दोनों देशों के बीच जल विद्युत सहयोग एक बेहतर सहयोग का उदाहरण है। भारत 1960 के दशक की शुरुआत से ही भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, जब इस देश ने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। तो पन्ना सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। श्री गडकरी ने कर्नाटक में 295 सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 1,385 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य आधारभूत ढांचे को उन्नत बनाने के साथ संपर्क सुविधा बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने का वायदा पूरा करना भी है। उन्होंने तेलंगाना में 435 किलोमीटर से अधिक लंबी 31 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। श्री गडकरी ने राजस्थान में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 972 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में विभिन्न रणनीतिक पहलुओं की श्रृंखला शुरू की। इस अवसर पर मुख्य रूप से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, श्रम विभाग, IIT मंडी और भारतीय रत्न तथा आभूषण संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के बीच 19 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर 4 अत्याधुनिक डिजिटल पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में कौशल विकास की भूमिका पर जोर दिया।
भारत के गोल्डन के प्रयासों से आज एक नया इंस्ट्रूमेंट सब डेवलप हो रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करना, जो जो नए वर्कफोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्किलिंग और रीस्किलिंग अपस्किलिंग से जुड़े रखना, ये चुनौती आज आपको खाए हो। ये सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल की मित्र, डिफरेंट एग्रीगेटर, डिफरेंट प्लेसमेंट कंपनी, डिफरेंट इंडस्ट्री की समूह और अकेडेमिया, ये सब मिलकर इस काम को आज सफल करने के लिए कमिटेड हो।
पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सब डिवीजनल अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को 8 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। शाहजहां शेख की 4 दिन की CBI हिरासत खत्म होने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 7 अन्य लोगों को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज शेख शाहजहां के आयात और निर्यात कारोबार की जांच के लिए संदेश खाली का दौरा किया। टीम ने शेख शाहजहां के 3 सहयोगियों के आवास की तलाशी भी ली। लगभग 7 घंटे तक की गई छानबीन में कई दस्तावेज बरामद किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, हटिया के पूर्व DSP PK मिश्रा और प्रीति कुमार को 18, 19 और 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी फाइनल में आज मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। 538 रन के जवाब में विदर्भ की टीम को मुंबई के स्पिनर्स ने 368 रन पर ही समेट दिया। दूसरी पारी में शानदार शतक बनाने के लिए मुशीर खान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि तनुष कोटियान को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया की आन से यंग से 21-19, 21-11 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में इस समय भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला एंडर्स एंटोनसेन से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम 24-22 से जीता, एंटोनसेन ने दूसरा गेम 21-11 से जीता। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों में पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर संपादकीय एग्जीक्यूटिव और समाचार वाचक सह अनुवादकों की भर्ती के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका विवरण news.air.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2024 है। भारत और सिंगापुर ने आज कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि समझौता अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर के संस्कृति समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने वर्चुअल बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल के पथनमथिट्टा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार अनिल एंटनी के चुनाव प्रचार में भी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 3,200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी। रणजी क्रिकेट में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की और बर्मिंघम में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम 24-22 से जीत लिया था। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।